नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की रैलियां और रोड शोज बदस्तूर जारी हैं, जिनमें बड़ी तादाद में भीड़ जुट रही है। इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार और रैलियों पर रोक लगाएं। कोर्ट ने टीवी और अखबारों के जरिए प्रचार का सुझाव देते हुए चुनावों को कुछ समय टालने पर विचार करने को भी कहा। तो क्या कोर्ट की सलाह मानते हुए चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए? इसी पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण से। चंद्रभूषण जी, जब कई एक्सपर्ट्स तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए राजनीतिक दलों को रैलियां और रोड शोज बंद करने चाहिए क्या?
अक्षय जी नमस्कार। एक तो बात शुरू करने से पहले अपने एक दोस्त को याद करना चाहूंगा। अरुण पांडे हमारे दोस्त, एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार, अच्छे पत्रकार, पिछले जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए और काफी गहमा गहमी पूरे देश में उसको लेकर थी और उसको कवर करने गए और वहां से लौटे और रास्ते में ही उनको कोरोना हुआ। यहाँ भर्ती हुए, वहां से घर आए और उसके कुछ ही समय बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मेरे लिए एक निजी तौर पर भी एक शॉक का विषय है। हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमको भी कवर करना होता है जब भी चुनाव की गहमा गहमी होती है और चीजें सामने आती है, रैलियां या दूसरी घटनाएं होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह जो चिंता है, उसमें हाईकोर्ट के अलावा और आम जनता की चिंता के साथ साथ एक पत्रकार के रूप में मेरी चिंता को भी शामिल किया जाए। हम सारे लोगों की यह चिंता जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्तेजना में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजनीति उत्तेजना पैदा करती ही है सबके अंदर, लेकिन बहुत सारी जो बुनियादी सावधानियां हैं वो उनका अनुपालन नहीं हो पाता। किसी के लिए यह संभव नहीं होता कि वो पूरी तरह से उसका अनुपालन कर सके। अभी अखिलेश जी, उनकी पत्नी जो डिंपल जी है, उनकी सूचना आई कि उनको कोरोना हो गया। तो मैं इस चिंता से सहमत हूं और अगर कुछ आगे बढ़ाया जा सके चुनाव जी, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं।
हालांकि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार करने का सुझाव दिया था, जिसका आरजेडी और एलजेपी समेत कई पार्टियों ने विरोध किया था कि वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार संभव नहीं। और अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये कहा है, उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने इस पर एतराज जता दिया है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इन रैलियों का इतना महत्व क्यों है किसी भी चुनाव में? क्या वाकई इससे असर पड़ता है अपने पक्ष में हवा बनाने में?
अक्षय जी, भारत तो मान लीजिए अभी एक पिछड़ा देश है और बहुत सारे घरों में टीवी भी नहीं है और ऑनलाइन तो कंप्यूटर तो बहुत कम लोगों के पास है। अमेरिका जो इतना विकसित देश है, वहाँ हमने देखा कि वहाँ के चुनाव प्रचार के दौरान जो बाद में वहाँ राष्ट्रपति के माने राष्ट्रपति थे, सिटिंग राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको कोरोना हुआ और वो खैर बहुत ही जो नफीस किस्म का बहुत ही महंगा इलाज था उसको करा के और उसी बीच में उबर के और फिर उन्होंने प्रचार किया। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, 10 लाख के लगभग वहाँ मौतें होने जा रही हैं, मतलब 9 लाख के लगभग हो चुकी हैं अभी, तो इसमें वहाँ के चुनावी सक्रियता का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो निश्चित रूप से जो भारत में जितनी विषम स्थिति है लोगों की और लोगों का एक्सेस भी उतना नहीं है चुनाव मतलब प्रचार माध्यमों के साथ में या संवाद के जो जनसंचार के माध्यम है उतना एक्सेस नहीं है, तो यहाँ तो जरूरी ही है। अदरवाइज तो ठीक है भाई, ये भी सवाल आएगा कि कि भाई टीवी से तो प्रचार में निश्चित रूप से 90 और 10 का ही अधिकतम रेशियो हो सकता है सरकारी पक्ष और विपक्ष में. 90% स्पेस टीवी का सरकार के पास रहेगा, 10% विपक्ष के पास रहेगा. ये तो कद्दू और अंगूर की सब्जी जैसा हो जाएगा. तो सब मिला के मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वह तो सुनिश्चित करना जरूरी है. लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं हो पाता है तो फिर उस चुनाव का क्या अर्थ है. तो मुझे तो ये लगता है कि फिजिकल रैलीज तो जरूरी है. जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो लोग एक जगह पर जमा होकर सुनते हैं, थोड़ा उसमें उनका राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है. उसको छोड़कर तो अभी मैं चुनाव प्रचार का कोई तरीका नहीं देख पाता भारत में.
बिल्कुल, छोटे जो चुनावी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी ये चिंता तो वाजिब है, क्योंकि उनका कहना है कि जिन पार्टियों के पास पैसा है वो तो वर्चुअल स्क्रीन लगाकर जगह जगह अपना प्रचार कर पाएंगी आम लोगों के बीच, लेकिन वो क्या करें. लेकिन ये भी सही है जैसा आप बता रहे हैं कि चुनावी रैलियों का कितना असर दूसरी लहर के दौरान दिखा था वो हम सब देख चुके हैं. सेकेंड वेव से ठीक पहले बंगाल में चुनावी रैलियां होती रहीं, केरल में उसका असर कई महीनों तक दिखा. दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग जुटे और गांव-गांव तक बाद में हमने देखा कि लोग संक्रमित हुए.
कितने शिक्षक उसमें मारे गए, आप सोचिए कितने शिक्षक चुनाव प्रचार करने वाले.
बिल्कुल. और अब IIT कानपुर के शोधकर्ताओं का कहना है कि 3 फरवरी तक कोरोना के केस पीक पर होंगे. अब ये वही समय होगा जब ये चुनाव भी होंगे, तो क्या सभी दलों को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा? क्या चुनाव टालने पर भी सोचा जा सकता है? जैसा कोर्ट ने भी कहा है कि जान है तो बाद में भी सभाएं होती रहेंगी, रैलियां होती रहेंगी, लेकिन जान जरूरी.
बिल्कुल, मैं तो इससे सहमत हूं कि अगर कुछ बढ़ाया जा सके तो कोई ऐसी आफत नहीं टूट पड़ेगी. कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के लिए अगर चुनाव टाले जा सके, उस समय तक यह भी थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो ओमिक्रॉन का इसकी लिडलिटी कितनी है, कितने मतलब कितना ये मारक क्षमता इसकी कितनी है. अभी यह तो पता है कि तेजी से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन लिडलिटी को लेकर, इसकी मारक क्षमता को लेकर अभी लोगों में एक राय नहीं है. डॉक्टरों के अंदर भी मसलन उनका कहना है कि अगर 30% भी अगर इसकी लिडलिटी हुई तो अगर 3 गुना अगर इसका फैलाव है, मतलब फैलने की क्षमता, तब तो बात वही हो जाएगी. 30% मतलब 3 गुना अगर फैलता है और 30% इसमें मौतों का अगर रेट रहता है, तब तो लगभग वही स्थिति हो जाएगी.
बिल्कुल. अभी तो जी कुछ मतलब अभी कह नहीं सकते कि ओमिक्रॉन आने वाले समय में अपना क्या रूप दिखाएगा, क्योंकि डेल्टा भी शुरुआत में ऐसा नहीं पता चला था, उसने अपना असली रूप बाद में अप्रैल मई में दिखाना शुरू किया था. आम जनता एक और सवाल कर रही है कि भाई आम लोगों पर पाबंदियां और आप कर रहे रैलियां. अब कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश ने भी, मध्य प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. यूपी में रात 11 से सुबह 5 बजे तक. तब लोग कह रहे हैं कि रात के सुनसान में खतरा है और दिन में रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही है तो वो खतरा नहीं है. शादियों में 200 लोगों की पाबंदी और रैलियों में हजारों की भीड़ जहां लोग मास्क भी नहीं लगाते, तो ये सवाल आम लोग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों?
ये बिल्कुल सही सवाल है लोगों का. और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं जनता के बीच में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, वो संघ के प्रचारक रहे हैं, तो वो जानते हैं बहुत सारी चीजें, वो समझ रहे होंगे. उनको भी जो कहा जाए कि जो एक लोगों को यह दिखना भी चाहिए कि हमारा जो शासक है, हमारा जो नेता है, वो संवेदनशील है इस मसले को लेकर, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये कोई निश्चित रूप से कोई यह सोच सकता है कि भाई अगर एक बर्थडे पार्टी पर भी अगर कोई आके टोक सकता है, तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं और उसमें कोई मास्क नहीं पहने हुए है, स्वयं प्रधानमंत्री नहीं मास्क पहने हुए हैं, तो उससे तो बहुत अच्छा नहीं संकेत जा रहा है. तो मैं बस विनम्रतापूर्वक इसमें यही कहना चाहूंगा कि लोगों में अगर यह बात है तो निश्चित रूप से सरकार तक भी यह बात पहुंची होगी और प्रधानमंत्री को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए. चीज को।
बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे देश में रैलियां भी जरूरी हैं, लेकिन अभी जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है उसकी चिंता भी वाजिब है। इसलिए थोड़ा अगर इंतजार कर लें, देख लें कि आगे केसेस कैसे होते हैं, तीसरी लहर क्या असर दिखाती है, उसके बाद कोई फैसला करें तो बेहतर। चंद्रभूषण जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।